بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, अगस्त की 20, मुहर्रम की 11 और मुर्दात माह की 29 तारीख। एक घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आरंभ हम विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे। उसके बाद मुहर्रम के संबंध में विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सभा के अंत में आप सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको ये बताते चलें कि हमारे कार्यक्रमों को आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सुविधा के अनुसार भी देख और सुन सकते हैं। एड्रेस है parstoday.ir/hi। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। इराकी अधिकारियों ने बताया है कि आशूर के कार्यक्रम में हमला करने की आतंकी योजना को विफल बना दिया गया। अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बनने जा रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाते हुए भारत से व्यापार रोक दिया है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इराक के पवित्र नगर करबला के अधिकारियों का कहना है कि आशूर के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरी तरह कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं पर हमले की आतंकी योजना को विफल बना दिया गया। इन अधिकारियों का कहना है कि आशूर के कार्यक्रमों में लगभग 60 लाख आजादारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इराकी सिक्योरिटी पॉपुलर फोर्स हशदुशाबी ने कहा है कि उसके 7,000 से अधिक जवान आशूरा के कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। हशदुशाबी ने इससे पहले बताया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के चारों तरफ के हिस्से को 5 किलोमीटर के व्यास में ड्रोन विमानों की निगरानी में रखा जा रहा है। अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक मुश्किल बन जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण नहीं है। सर्गेई लावरोफ ने कहा कि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से मिलने वाली खबरों से ये पता चलता है कि वहां पर तालिबान के विरुद्ध एक बहुत ही मजबूत मोर्चा बन रहा है। रूसी विदेश मंत्री के अनुसार इस मोर्चे में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और पंजशीर के जाने माने दिवंगत कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जैसे लोग शामिल हैं। पंजशीरी अफगानिस्तान का वो एकमात्र क्षेत्र है जिस पर तालिबान कभी भी कब्जा नहीं कर सके। इसी बीच अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखकर पश्चिम से तालिबान के विरुद्ध युद्ध में सहायता की मांग की है। اپنے لیکھ میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات کوئی بھی مہتو نہیں رکھتی کہ کیا ہوگا۔ احمد مسعود لکھتے ہیں کہ ہم پنجشیر سے طالبان کے ورودھ ایک مضبوط مورچے کے روپ میں سنگھرش کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے باپ احمد شاہ مسعود کے مارگ پر آگے بڑھتا رہوں گا۔ ناروے کی ایک این جی او نے کہا ہے کہ طالبان نے اشرف غنی سرکار کے لیے کام کر چکے لوگوں کو سزا دینے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں جنہوں نے پورو شاسن میں کام کیا۔ ان کے نہ ملنے کی استھتی میں طالبان ان کے پریوار کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ کے انوسار وہ لوگ زیادہ خطرے میں ہیں جو پورو شاسن میں کسی مہتوپورن پد پر رہ چکے ہیں۔ پولیس فورس یا جانچ ایجنسی میں شامل لوگوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ این جی او کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی رپورٹ سنیکت راشٹر سنگھ کی سنستھاؤں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ افغانستان کے کئی کھیتروں پر طالبان کے نینترن کے ساتھ ہی افغانستان اور پاکستان کے بیچ ویاپارک لین دین ایک دم سے بڑھ گیا ہے۔ اناتولی سماچار ایجنسی کے انوسار پاکستان کے کسٹم وبھاگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سنیکت سیما سے سامان سے بھرے 475 ٹرک گزرے ہیں، جبکہ 17 اگست کو ان کی سنکھیا 1123 ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان تتھا پاکستان کے بیچ ویاپارک لین دین میں تیزی سے وردھی ہو رہی ہے۔ دوسری اور طالبان نے افغانستان پر اپنا نینترن بنانے کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ ویاپار روک دیا ہے۔ طالبان نے سطح پر قابض ہوتے ہی بھارت کے ساتھ آیات اور نریات دونوں کو ہی بند کر دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد وہاں سے بھارت کے لیے ہونے والا ڈرائی فروٹ کا کاروبار بری طرح سے بادھت ہوا ہے۔ اس سے بھارت میں سوکھے میوے کے داموں میں وردھی ہو گئی ہے۔ اب آشنکا یہ جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے سمے میں بھارت میں ڈرائی فروٹس کی قیمتوں میں وردھی ہو سکتی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان بھارتی کوٹنیتک سنستھانوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں یہ خبر آئی ہے کہ طالبان نے قندھار اور ہرات میں استھت بھارتی وانجیہ دوتاواسوں کی تلاشی لی، جنہیں تازہ حالات کو دیکھتے ہوئے بند کر دیا گیا تھا۔ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ طالبان دوتاواسوں میں لگے تالے توڑ کر اندر گھس گئے۔ قندھار دوتاواس میں دستاویزوں کے لیے الماریاں بھی کھنگالی گئیں اور دونوں دوتاواسوں میں کھڑی گاڑیاں وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہیں جلال آباد اور کابل کے وانجیہ دوتاواسوں میں کیا ہو رہا ہے اس کی جانکاری اپلبدھ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے قریب 6000 لڑاکوں نے راجدھانی کابل کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کا نیتتو انس حقانی کر رہے ہیں، جو حقانی سموہ کے پرمخ سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں۔ افغانستان کے مدعے کو لے کر بھارت اور برٹن کے ودیش منتریوں کے بیچ سہمتی بنی ہے۔ بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر تتھا برٹن کے ودیش منتری ڈومینک راب نے افغانستان کی سنیکت سرکشا چنوتیوں سے مقابلے کے ادیش سے آپس میں سہمتی کی ہے۔ بھارت کے ودیش منتری نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آتنکواد کے پرتی زیرو ٹالرنس کی نیتی ہمیں اپنانی ہوگی اور اس بارے میں کوئی بھی دوہرا ماپ دنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کے ودیش منتری کا کہنا تھا کہ آتنکواد کا سمرتھن کرنے والے دیشوں کی بھومیکا کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آتنکواد کے مدعے پر سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کو سمبودھت کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ ہم نے کئی آتنکی حملوں کا اب تک سامنا کیا ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ آتنکواد کو کسی دھرم، کسی راشٹر، سبھیتا یا پھر کسی جاتی سموہ سے جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آتنکواد کے ہر روپ کی نندا کی جانی چاہیے۔ دو ہزار سے ادھک امریکی بختر بند گاڑیاں طالبان کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ رویٹرز کے انوسار اس بات کی پربل سمبھاونا پائی جاتی ہے کہ 2000 سے ادھک امریکی بختر بند گاڑیاں اس سمے طالبان کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں۔ افغانستان سے امریکی سینکوں کی واپسی کے بعد طالبان کو امریکہ کی 2000 سے ادھک بختر بند گاڑیاں ملی ہیں۔ एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 2000 बख्तर बंद गाड़ियों के अतिरिक्त तालिबान को 40 हेलीकॉप्टर भी मिले हैं, जिनमें ब्लैक हॉक और स्किन ईगल भी शामिल हैं। इसी बीच व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया है कि अमरीकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने बड़ी मात्रा में अमरीकी हथियारों पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह बात स्वीकार की है कि काफ़ी संख्या में अमरीकी हथियार अब तालिबान के हाथों में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें वे हथियार भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान की सेना के लिए थे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुलिवन ने कहा था कि इस बारे में हमारे पास स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी नहीं है कि ये सभी हथियार कहाँ गए, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तालिबान के हाथों लग चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन का फिर बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि संकट की स्थिति में अफरा तफरी के बगैर अफगानिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। बाइडेन ने बुधवार को एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि तालिबान ये इच्छा रखते हैं कि विश्व समुदाय उन्हें एक कानूनी सरकार के रूप में स्वीकार करे, जबकि तालिबान के सामने इस समय अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों का खतरा अफगानिस्तान की तुलना में दुनिया के अन्य स्थानों पर ज्यादा है। सीरिया और पूर्वी अफ्रीका में अलकायदा के खतरे को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी सैनिकों के निष्कासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज्यादा खतरा कहां पर मौजूद है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में कहा है कि सैन्य बल के जरिए दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की कोशिश करना समझदारी नहीं है। लेबनान के रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय की प्रभारी ने ज़ायोनी शासन द्वारा अपने देश की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किए जाने का विरोध किया और इसकी शिकायत राष्ट्रसंघ में की है। अन्नशरा समाचार एजेंसी के अनुसार ज़ैना अकर ने अपनी शिकायत में कहा है कि सीरिया पर हमला करने के उद्देश्य से अवैध ज़ायोनी शासन लेबनान की हवाई सीमा का उल्लंघन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह काम अंतर्राष्ट्रीय समझौतों विशेषकर 1701 का खुला उल्लंघन है। लेबनान के रक्षा मंत्री का कहना था कि हमने राष्ट्रसंघ में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ज़ायोनी शासन की इस गैर कानूनी कार्रवाई की शिकायत दर्ज करवा दी है। उनका कहना है कि लेबनान राष्ट्रसंघ से मांग करता है कि वो ज़ायोनी शासन की इन कार्रवाइयों को रुकवाए। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे करबला में हजरत जैनब की याद में जलती मोमबत्तियों और उनको उम्मुल मसायब के नाम से याद किए जाने के बारे में। और फिर बात करेंगे यमनी जनता द्वारा लाखों की संख्या में एकत्रित होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को याद किए जाने के बारे में। और अंत में चलेंगे भारत, जहां भारत पर शासित कश्मीर के करगिल में हर ओर से लब्बैक या हुसैन की आवाजें आ रही थी, तो वहीं घाटी में आजादारों पर पहरा लगा हुआ था। तो सबसे पहले चलते हैं इराक और बात करते हैं पवित्र नगर करबला में मनाए गए शामे गरीबा के कार्यक्रम के बारे में। करबला में जहां एक और लाखों की संख्या में इमाम हुसैन अलैहि सलाम के चाहने वालों की भीड़ थी, तो वहीं दूसरी ओर कूफा शहर में बनी उमैया के खंडर में बदल चुके महल पर खाक उड़ रही थी। इस संबंध में कूफा शहर से IRIB के संवाददाता जलाल खालिदी एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास की आवाज में।
कल रात शाम गरीबा थी और करबला जनाब जैनब को याद कर रही थी। लोगों ने जनाब जैनब की याद में मोमबत्तियां जलाई जो अपने भाई की याद में ढलती जा रही थी। एक अजादार का कहना है कि ये मुसीबत और त्रासदी इतनी बड़ी थी कि जनाब जैनब को उम्मुल मसायब कहा जाने लगा। यही वो वक्त है कि जब जनाब जैनब को कैदी बना लिया गया था। उन्होंने आशूरा आंदोलन के दूसरे भाग की शुरुआत कूफा स्थित उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के महल से अकेले ही की। आज जब खंडर में बदल चुके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के महल में जाएं, तो देखेंगे कि वो जगह जहां एक समय बनी उमैया इस महल को अपनी शान के तौर पर दिखाते थे और न जाने कितने जघन्य अपराधों को उस महल में उन्होंने अंजाम दिया, जिसमें से एक मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद करना भी है, और साथ ही इसी जगह पर इमाम हुसैन के परिवार वालों को जंजीर में जकड़ कर रखा गया था। महल में मौजूद एक स्थान उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का है और ये वही जगह है जहां पैगंबर इस्लाम के परिजनों को कैदी बनाए जाने के बाद स्थानांतरित किया गया था। आज ये सब खंडर बन चुका है। उसी स्थान से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये कोशिश की थी कि खुद को और बनी उमैया को करबला की जंग में जीता हुआ दिखाए, लेकिन इतिहास ने ये दिखा दिया कि बनी हाशिम के धैर्य और प्रतिरोध ने कसरुल अमारा को मिट्टी में मिला दिया और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपमानित हुआ और इमाम हुसैन की शहादत पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बन गई। आज एक तरफ इमाम हुसैन के करोड़ों चाहने वाले हैं जो करबला में मौजूद हैं और बनी उमैया के महल खंडर बन चुके हैं।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं इस देश में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आयोजित होने वाली विशाल शोक सभाओं और रैलियों की। आशूरा आंदोलन के संदेश की झलक यमनियों के प्रतिरोध में साफ दिखाई दे रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए यमनी जनता आज के यजीदियों के आगे पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। इस बारे में सना से IRIB के संवाददाता सुल्तान असदा अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी की आवाज में।
करबला की ऐतिहासिक घटना ने जिसमें बनी उमैया को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा, इस्लाम को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। यमनी जनता ने इस वर्ष भी करबला की दुखद घटना को याद करते हुए लाखों की उपस्थिति में शोक सभाएं आयोजित की और अत्याचारियों के मुकाबले में डट रहने वाले इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने के अपने संकल्प को दोहराया। शोक सभा के एक आजादार का कहना है कि ये आजादारी और गतिविधियां जो यमन के विभिन्न इलाकों में हो रही हैं, करबला के संदेश की एक झलक हैं। जैसे इमाम हुसैन और उनके साथी आरंभ में घेरे गए और अंत में शहीद हुए, उसी तरह आज यमनी जनता घेरे में है और शहीद हो रही है। साम्राज्यवाद के सामने यमनियों का प्रतिरोध करबला में हुसैन बिन अली के साथियों के बलिदान की याद दिलाता है। यमनियों का मानना है कि पाश्विक हमलों और घेराबंदी के कारण यमनी लोगों पर पड़ने वाली मुसीबतें करबला की दुखद घटना और पैगंबर इस्लाम के परिजनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। आशूरा आंदोलन यमनी जनता के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ और मार्गदर्शक है। एक अन्य यमनी आजादार का कहना है कि यमनी लोगों ने इमाम अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखा दिया है। यमनी जनता हर तरह की गुलामी का विरोध करती है, वो सम्मानजनक जीवन जीने के अपने संकल्प की घोषणा करती है जो इमाम हुसैन के लक्ष्यों में से एक था, क्योंकि इमाम हुसैन حسین نے ہی حیات منت ضلع کا نعرہ دیا تھا۔ اس بیچ یمن کے لوکپریہ جن آندولن کے مہا سچیو الحوثی نے اتیاچار اور اتیاچاریوں کے خلاف امام حسین کے آندولن کی اور اشارہ کرتے ہوئے یمنی جنتا دوارا امریکہ اور سعودی عرب کے اتیاچاروں کا ڈٹ کر کیے جا رہے مقابلے پر کہا،
وبات جلیاً بالهزيمة الامريكية في افغانستان،
افغانستان میں امریکہ کی شرمناک ہار اسلامی راشٹروں کی پرگتی کی اور اشارہ کر رہی ہے۔ ساتھ ہی اس میں امریکہ اور اویس زایونی شاسن سے دوستی اور ان کی غلامی کرنے والوں کے لیے سندیش بھی چھپا ہے۔
كل المحافظات اليمنية الحرة احتشدت في
اس سال یمن کے آزاد ہو چکے پرانتوں میں بھی امام حسین کا شوق منانے کے لیے بڑے پیمانے پر سبھائیں آیوجت کی گئیں۔ لاکھوں کی سنکھیا میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے والے یمنی امام کے پرتی اپنی نشٹھا کی گھوشنا کر رہے تھے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر رہے تھے کہ وہ اپمان کا جیون جینے سے اچھا اپنی جان دینا پسند کریں گے۔ ظلم اور ظالموں سے مقابلے کے لیے اس بار امام حسین علیہ السلام کی تلوار یمنیوں کے ہاتھوں باہر آئی ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ستیہ تک پہنچتا ہے۔
سلطان صدح، خبرگزار صدا وسیمہ، صنعاء۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، اور بات کرتے ہیں بھارت پر شاست کشمیر کے کرگل میں، جہاں پرمپراگت طریقے سے عاشور کا جلوس نکلا، وہیں کشمیر گھاٹی میں محرم کے جلوسوں پر لگا رہا پرتیبند۔ اس بیچ کشمیر میں الگاؤ وادیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے شری نگر سے ہمارے سنواد داتا سپت محمد حسن۔
کرگل میں آج یوم عاشورہ منایا گیا، اس حوالے سے پورے کرگل چھیتر میں جلوس نکالے گئے، جس میں بڑی سنکھیا میں عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاگ لیا۔ سب سے بڑا جلوس کرگل کے مین بازار سے نکلا، جس میں دسیوں ہزار افراد نے شرکت کی، جو سینہ کوبی کرتے ہوئے نواہ خوانی کر رہے تھے۔ اس اوسر پر وبھن دھارمک نیتاؤں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پر وستار کے ساتھ روشنی ڈالی۔ ایک شردالو نے ریڈیو تہران سے وارتا کرتے ہوئے کہا،
پورے دنیا کی طرح آج ڈسٹرکٹ کرگل میں بھی یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ اپنے دلوں میں جذبہ لیے لوگ یہاں پہ اپنے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں۔ جو مہاماری پچھلے دو سال سے چل رہی ہے اس کے کارن اتنے لوگ آ نہیں سکے، تب بھی جو دلوں میں جو لوگوں کا جذبہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج یوم عاشورہ کے دن پورے دنیا کی طرح کرگل میں بھی لوگوں نے کافی جوش و خروش سے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جو آج سے جو 1400 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کو دل میں رکھے ہوئے سینہ زنی کرتے ہوئے سر پیٹتے ہوئے اب دیکھیے کتنا لوگوں میں جذبہ ہے کہ ہم اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔
اس بیچ ایک بار پھر جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ آزاداری کے حوالے سے جو نیتیاں انہوں نے اپنائی ہے وہ لوگوں کے ہت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 محرم الحرام کو جو گھٹنا گھٹی، اس کے بعد آزاداروں اور عام ناگرکوں کی سرکشا کو یقینی بنانے کے لیے سرینگر کے آبی گزر سے جلوس پر پرتیبند لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مذہبی آزادی ضرور ہے، پرنتو ان کے انوسار کچھ تتو اس میں راجنیتی کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر دھارمک دلوں جس میں اتحاد المسلمین انجمن شری شیان شامل ہیں نے کہا ہے کہ جس طرح سے 8 محرم الحرام اور عاشورہ کے جلوس پر پرتیبند گھوشت کیا گیا ہے وہ دینی معاملات میں مداخلت ہے، جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس بیچ جموں پرانت کے راجوری میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاوادی چھاپہ ماروں کے بیچ ایک مڈ بیٹ جاری ہے، جس میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور ایک الگاوادی چھاپہ مار ہتات ہوا ہے، جبکہ ایک سرکشا کرمی کے گائل ہونے کے سماچار ہیں۔ مڈ بیٹ بھی جاری ہے اور بیورے کی پرتیکشا ہے۔ سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
شروتاؤں، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستوں، ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا پتر سنسار، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے محرم مہینے کے دکھد اوسر پر ریڈیو ہندی تہران کی اور سے پیش کیے جانے والے وشیش کارکرم کی ایک ان کڑی۔
श्रोताओं, मुहर्रम के संबंध में विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं मोहम्मद मेहंदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
शोक का आयोजन ऐसा कार्यक्रम होता है जो किसी व्यक्ति, परिवार, खानदान या समाज को सांत्वना देने के लिए आयोजित किया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा है जिसके अनेक आयाम हैं। यह आशुर की घटना और करबला के आंदोलन को जारी रखने की प्रक्रिया है। इमाम हुसैन का गम सुधार और निर्माण का एक आंदोलन है जो व्यक्ति और समाज को संवारता है। इमाम हुसैन का गम ऐसा है जो समरसता का संदेश देता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ता और करीब करता है। इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसके लिए केवल इस्लाम नहीं बल्कि अन्य धर्मों के मानने वालों के दिल भी श्रद्धा के साथ धड़कते हैं।
मुहर्रम का महीना आते ही श्रद्धालुओं की आंखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में छलक उठती हैं और दिलों में इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाती है। امام حسین علیہ السلام کا شوق سارجنک ہوتا ہے، اس میں بوڑھے، بچے، مہیلائیں سب شامل ہوتے ہیں اور پوری شردھا سے شامل ہوتے ہیں۔
لوگ ویسے تو شوق سبھاؤں میں امام حسین کا غم منانے کے لیے ایکترت ہوتے ہیں، لیکن ان سبھاؤں سے ان پر بڑے سارتھک مانسک و منوویگیانک پربھاؤ دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ غم استتو پر چھا جاتا ہے لیکن انسان کو ترپت کر دیتا ہے۔ یہ عام زندگی کے دکھ درد سے الگ ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جو پریرنا دیتا ہے، یہ وشیش سنتشٹی اور اتساہ دیتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ جو مجلسوں اور شوق سبھاؤں میں جانے لگتا ہے وہ کبھی بھی ان سے اپنا ناتا توڑ نہیں پاتا۔ یہ پیغمبر اسلام کے اس کتھن کا ادھارن ہے کہ امام حسین کی شہادت کے پرتی مومن بندوں کے دلوں میں ایک گرمی ہے جو کبھی شانت نہیں ہوتی۔
امام حسین علیہ السلام کے شوق کا وشیش آیام لوگوں کا اتساہ، گہرا لگاؤ اور شردھا ہے۔ البتہ یہ کیول بھاؤنا کا معاملہ نہیں بلکہ پورنتہ وویکادھین پرکریا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شوق سبھاؤں سے اس بات کا بھی اچھا اوسر ملتا ہے کہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے آندولن اور ان کے ویکتتو سے اوگت کرایا جائے اور دھارمک شکشاؤں کے پرچار کا اچھا منچ بھی ہے۔ مجلسوں میں وکتا اور دھرم گرو دھارمک شکشاؤں اور نیموں کو بیان کرتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ پورے اتہاس میں امام حسین علیہ السلام کا شوق اسلام دھرم کے شکشاؤں اور نیموں کو بیان کرنے اور لوگوں تک پہنچانے میں بہت پربھاوی رہا ہے۔
امام حسین سن 61 ہجری قمری میں آندولن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی سوئی ہوئی آتما کو اپنی قربانی سے جھنجھوڑ دیا۔ اسی طرح شردالو امام حسین کی شوق سبھاؤں میں بھاگ لے کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ویکتتو سے اوگت ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہان ہستیاں تھیں جو وفاداری، سنیم، دڑھتا، بہادری اور تیاگ جیسی وشیشتاؤں و گنوں سے سسجت تھی۔ امام حسین کا ہر ساتھی اپنے آپ میں آدرش تھا۔ لوگوں کو یزید اور یزیدیوں کے ویکتتو کی بھی جانکاری ملتی ہے۔ ان کی درندگی دیکھ کر ہر انسان کا دل نفرت سے بھر جاتا ہے۔ اسلام نے اس بات پر وشیش روپ سے بل دیا ہے کہ اچھے لوگوں کو پسند کرو اور برے لوگوں سے دوری بناؤ۔ یہ کرتویہ ہے کہ سداچاری ویکتیوں سے مترتا کی جائے اور کوکرمیوں سے دور رہا جائے۔ امام حسین کا شوق منانے والے سپشٹ شبدوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہے امام، हम आपके दोस्तों के दोस्त और आपसे युद्ध करने वालों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हैं।
कुरान में ईश्वर ने कहा है कि क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि मोमिन बंदों के दिल ईश्वर के समक्ष और जो कुछ उसकी तरफ से भेजा गया है उसके समक्ष नतमस्तक हो जाएं। मुहर्रम आता है तो श्रद्धालुओं के दिल एक ईश्वरवाद का संदेश देने वाले पैगंबरों के समक्ष झुक जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना ही अपने आप में इस बात का चिन्ह है कि श्रद्धालु को ईश्वर पर गहरा ईमान है। पैगंबर इस्लाम का कथन भी है कि हुसैन की दोस्ती ईश्वर की दोस्ती और उनकी दुश्मनी ईश्वर की दुश्मनी है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो आंसू बहते हैं वो श्रद्धा में डूबे होते हैं, वो आत्मा की पवित्रता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए होते हैं। जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है तो लोगों के दिल दुखी हो जाते हैं। यदि कोई महान आदमी दुनिया से जाता है तो उसके जाने का दुख लोगों को अधिक होता है। यदि इस प्रकार के महान इंसान बड़े मजलूमियत के साथ बेरहमी से कत्ल कर दिए जाएं तो गम कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इमाम जैनुल आबिदीन, जो इमाम हुसैन के बेटे थे और बहुत अधिक बीमार होने के कारण युद्ध में शामिल नहीं हो सके, बाद में अपने पिता और उनके साथियों की कुर्बानी याद करके बहुत रोते थे। वो पूरा जीवन रोते रहे क्योंकि उन्हें केवल ये दुख नहीं था कि उनके प्रियजन इस दुनिया से चले गए, बल्कि इसलिए दुखी थे कि उन्हें बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से शहीद किया गया।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को याद करके जो आंसू बहाए जाते हैं उनसे लोगों की भावनाएं मचलने लगती हैं। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर न्योछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इमाम हुसैन और उनके साथियों की श्रद्धा लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक उतरी हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के संबंध में तो स्थिति ये है कि बहुत से लोग इमाम हुसैन का नाम सुनकर ही दुखी हो जाते हैं और कुछ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए श्रद्धालुओं की आंख से बहने वाले आंसू इस महान हस्ती से लोगों के बहुत गहरे लगाव को दर्शाते हैं। ये गहरा लगाव इंसान को प्रेरित करता है कि इमाम हुसैन और उनके साथियों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन और शोध करे। शोध व अध्ययन के नतीजे में इंसान के दिल में ज्ञान के सूते फूटते हैं और इससे आत्मा का निर्माण होता है। लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे काम करें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पसंद है और ऐसे कामों से बचें जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाराज हो सकते हैं।
इमाम हुसैन पर रोना अपने आप में एक बड़ा मिशन है। इसके राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव भी हैं, इसलिए कि रोने का ये सिलसिला गहरी जानकारी पर आधारित है। ये उस महान इंसान की याद है जिसने धर्म को नया जीवन प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। ये शोक आम श्रद्धालु को इमाम हुसैन जैसी महान हस्ती से जोड़ देता है और इमाम हुसैन के महान लक्ष्य उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य महसूस होने लगते हैं।
इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शोक मनाता है तो वास्तव में इमाम हुसैन उनके आंदोलन तथा उनके लक्ष्यों के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा भी करता है। इसी तरह वो व्यवहारिक चरण में भी अपनी वफादारी साबित करता है।
इमाम हुसैन का शोक मनाना वास्तव में इमाम हुसैन के आंदोलन को जिंदा रखने का एक प्रभावी उपाय भी है। इससे इमाम हुसैन के आंदोलन का संदेश आज भी लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों में आम हो रहा है। इमाम हुसैन के गम में रोना वास्तव में अत्याचार को ललकारना भी है और अत्याचारियों पर इसकी गहरी चोट लगती है। इमाम खुमैनी ने कहा है कि इमाम हुसैन का शोक मनाना और उन पर रोना वास्तव में इमाम हुसैन के आंदोलन को जीवित रखने के समान है और इस शोक व रोने से जालिम कांप उठते हैं।
ये मातम कैसे रुक जाए, जहरा की दुआ है ये मातम, ये मातम कैसे रुक जाए, जहरा की दुआ है ये मातम। دولت دے کر
مولین کی ہر دولت دے کر
اس غم کی حفاظت کرنا ہے شبیر کی خاطر جینا ہے شبیر کی خاطر مرنا ہے
شبیر کی خاطر مرنا ہے
یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے عظمت کے لیے
اس پرچم کی عظمت کے لیے
عباس نے بازو دے ڈالے
عباس نے بازو دے ڈالے
اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل پر بھالے
غازی نے سہے دل پر بھالے
اس پرچم کے مشکیزہ سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے عباس علی کا پرچم ہے یہ پرچم کیسے جھک جائے
दोस्तों कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों हमें आशा है कि आप सब कुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
और आज भी हम ईमेल लेके आए हैं, कमेंट्स भी होंगे इसमें और दूसरे कार्यक्रम भी होंगे
शामिल होंगे, लेकिन देखते हैं कि दीदी शुरुआत कहाँ से करती हैं।
जी ईमेल से शुरू करें।
हमेशा ईमेल से शुरू।
जी जी जी। तो उमरी भिंड मध्य प्रदेश से अनाम दर्शी मसी ने लिखा है कि मैं रेडियो तेहरान हिंदी सेवा को सुन रहा हूं और आपके कार्यक्रम बेहद पसंद करता हूं। मैं आपको कार्यक्रम के बारे में व्हाट्सएप पर लिखकर भेजता हूं, लेकिन आप हमारे पत्रों को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? कृपया आप ये बताने की कृपा करें कि आपको संदेश व्हाट्सएप पर भेजें या टेलीग्राम पर, और पत्र दिल्ली के पते पर या सीधे तेहरान के पते पर भेजें, बताने की कृपा करें। और आप ये भी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा शुरू हुई है या नहीं, पत्र का जवाब अवश्य देने की कृपा करें।
देखिए आजकल एक तो बहुत हम आभारी हैं के इतने
दिनों के बाद
और इतने दिनों के बाद इतने ध्यान से इन चीज़ों पर तवज्जो रखते हैं हमारे श्रोता, वाकई इनका आभार हम व्यक्त करते हैं। संदेश जो है दीदी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से अगर आता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। अलबत्ता ये भी एक बात है कि जब पत्र हमें मिलता है तो वो भी उसकी एक अपनी अलग खुशी होती है। तो आप दिल्ली के पते पर या तेहरान के पते पर भेज सकते हैं, लेकिन ये तय है कि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। आपके विचार और आपकी बात जो है वो हम तक ज़्यादा आसानी से पहुंच सकती है।
व्हाट्सएप पे आप भेजें और ईमेल
या ईमेल पे आप भेजें तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल, ये भी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, लिखते हैं कि लंबे समय बाद रेडियो तेहरान का कार्यक्रम ये सोचकर सुना कि शायद उसमें कुछ तब्दीली आई होंगी, परंतु पाया कि स्थिति जस की तस बनी हुई है।
بہرحال آپ بھی کچھ مجبوریاں آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہی رہی ہوں گی، ورنہ چاہتے تو آپ بھی یہی ہوں گے کہ پرسارن سے پہلے کی طرح زیادہ سے زیادہ شروتا جڑے رہیں، کیونکہ شارٹ ویو پرسارن پوری دنیا میں سماپتی کی کگار پر ہے، اس لیے ہمارا بھی آپ سے کچھ زیادہ کہتے نہیں بنتا۔ ہاں، ہمارے دل میں ہمیشہ ایک کسک ضرور رہتی ہے۔ آج دنانک 6 اگست کے کاریکرم کے تحت سانسکرتک خبر میں پچھلے دنوں پیرس میں پردرشت 2 ایرانی دستاویزی فلموں نوروم فار اینجلس تتھا دا ایکسوڈوس کی وشیشتاؤں کے بارے میں سنا تو فلم دیکھنے کی اچھا جاگرت ہوئی۔ اچھی جانکاری سے روبرو کرانے کا شکریہ۔ کاریکرم میں پاکستان سے شروتا بھائی لیاقت علی کی آواز میں ان کے وچار سن کر بھی اچھا لگا۔
بہت بہت دھنیواد اگروال جی کا، ہم کاریکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ کاریکرموں میں بدلاؤ کی جہاں تک بات ہے، ایک تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے سجھاؤ ضرور ہم تک پہنچیں، ان سے ہمیں مدد ملے گی۔ شارٹ ویو کی جو بات ہے، اب اس کے لیے ویکلپک راستے سارے ہی سنستھان ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگ تلاش بھی کیا جا چکا ہے۔ ویب سائٹ پر پرسارن اب دے دیا جاتا ہے کہ آسانی سے اور اچھی کوالٹی کے ساتھ سنا جا سکے۔ یہ سویدھا ہم نے بھی اپنے شروتاؤں کے لیے، اپنے پاٹھکوں کے لیے رکھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ پرسارن اچھی آواز میں سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کاریکرموں کا جو ڈھانچہ ہے اس میں آپ بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ، ہم یہی چاہیں گے کہ کچھ سجھاؤ دیں کہ جس پر وچار کیا جائے۔
تو بھیا، اب ایرانی سنسکرتی سے جڑی خبر کی باری ہے
جی،
اور اب ہم چار محل اور بختیاری پرانت چلتے ہیں۔ یہ پرانت ایران کے 31 پرانتوں میں سے ایک ہے۔ یہ دیش کے دکشن پشچمی بھاگ میں استھت ہے۔ اس کی راجدھانی شہر کورت ہے۔ یہاں کا بردے نامک ایتیہاسک محل ابھی بھی اتیت کی طرح ہی چل رہا ہے۔ ادھکانش انیہ ایتیہاسک سنرچناؤں کے وپریت جنہیں یا تو چھوڑ دیا گیا ہے یا بحالی کے بعد سنگرالیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ ایتیاسک محل قاجر کھل کے انت میں بختیاری زمینداروں دوارا بنایا گیا تھا۔ محل میں رکشاتمک قلعے بندی اور رہنے والے کوارٹرز دونوں ابھی بھی سرکشت ہیں۔ ان میں 2 الگ الگ آنگن شامل ہیں، جن میں سے پرتیک میں ایک اندرونی یا آنترک کوارٹر اور ایک بیرونی یعنی باہری کوارٹر کے ساتھ ساتھ ایک استبل اور بھنڈار ککش ہے۔ بردے کیسل بردے گاؤں کی اور ایک پراکرتک پہاڑی پر استھت ہے، اور یہ پچھلے ورشوں میں شتیگرست ہونے کے باوجود ابھی بھی ستھر ہے۔ یہ گاؤں پشچمی پرانت چار محل اور بختیاری میں شہر کورٹ سے 45 کلومیٹر دور استھت ہے۔ محل کے سنستھاپکوں کے کئی ونشج ابھی بھی عمارت میں رہتے ہیں، جو پرشنسکوں اور پریٹکوں کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ بردے گاؤں کے نواسی ابھی بھی محل کے نواسیوں کو خان کی اپادھی سے بلاتے ہیں اور وبھن معاملوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ورتمان میں محل کے پرتیک پرانگن کا سوامتو اس کے سنستھاپکوں کے کئی ونشجوں کے پاس ہے، جو محل کو استھائی نواس کے روپ میں اپیوگ کرتے ہیں، حالانکہ 2 پریوار استھائی روپ سے محل میں رہتے ہیں۔ بردے کیسل ان ویکتیوں کی ایک نجی سمپتی ہے، لیکن راشٹریہ وراثت استھل کے روپ میں سنرچنا کی سوچی کے کارن سانسکرتک وراثت سنگٹھن کے سنیوجک کے ساتھ پرشاست ہے۔
بہت اچھی خبر سنائی آپ نے کہ اس طرح سے یہ محل آج بھی پریوگ میں ہے۔ اور شروتاؤں، باری ہے آپ کے کمنٹس کی، تو دیکھتے ہیں کہ دیدی نے آج کے کاریکرم کے لیے کون سے کمنٹس اور کون سے وشے چنے ہیں۔
جی، نئی سرکار کا گٹھن ہوتے ہی جاپان کے ودیش منتری کریں گے تہران کا دورہ، دوپکشی سمبندھوں میں ہوگی چرچا۔ اس پر ایس بالو لکھتے ہیں، دھنیہ ہے ایران، ایران سرکار سوئم شاسیت देश है, वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्वशासन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। JCPOA ट्रंप लूजर विश्व विदूषक द्वारा हत्या कर दी गई और आगे पतला छोटा आदमी बर्डन बिन बाइडेन द्वारा गला इसका घोंट दिया गया था। महान ईरान उन परिदृश्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है जो इस सौदे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वे उसी के अनुसार कार्य करेंगे क्योंकि हमारे पास नया प्रमुख नेता है। हमें शांत रहना है और उसे सेटल होने का मौका देना है और ये कभी खत्म न होने वाली JCPOA की गाथा एक दिन समाप्त हो जाएगी। ईरान की कुछ रेड लाइंस हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता।
जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच जो एक तरह का मुकाबला जारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दो रुझानों और दो विचारधाराओं का मुकाबला है एक दूसरे से। अमेरिका की एक विचारधारा है जिसके तहत वो दुनिया के देशों को अपने अधीन रखना चाहता है और चाहता है कि वो अगुवाई करे और उसके इशारे पर वो देश काम करे। इस्लामी गणतंत्र ईरान स्वाधीन रहना और आत्मनिर्भर रहना इसको अपना बुनियादी उसूल मानता है। इस लिहाज से और इस तरह से दोनों के बीच एक बुनियादी टकराव है और जो कि जारी है, और ये टकराव इसी तरह आगे बढ़ रहा है। हम ये देखते आए हैं कि इस टकराव में अमेरिका अब तक बार बार नाकाम होता आया है और आगे भी उसे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रों से और जनता से टकराने की कोशिश कर रहा है।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वालों के नाम सुप्रीम लीडर का बधाई संदेश, इस पर अब्दुल्ला लिखते हैं कि ओलंपिक में महान उपलब्धि पर ईरान और सभी ओलंपियन पदक विजेताओं को बधाई, उन्होंने ईरान का गौरव बढ़ाया है।
ओलंपिक से कैसी जगह है और एक ऐसा पटल है जहां अलग अलग देशों की प्रतिभाएं सामने आती हैं और फिर उन प्रतिभाओं को जब एक दूसरे के रूबरू किया जाता है तो उसमें फिर ये सामने आती है बात कि किसने कितनी मेहनत की है, किसके अंदर कितनी प्रतिभा है, और सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि लगन से और मेहनत से, और वो भी असाधारण असामान्य मेहनत से किसने अपने आप को किस काबिल बनाया है, ये चीज़ें सामने आती हैं। तो ये एक अच्छा पटल है, महत्वपूर्ण पटल है, और देशों को अब आजकल कोरोना काल में जबकि चारों तरफ चिंता का माहौल है, घबराहट का माहौल है, इस तरह की खबरें, ओलंपिक की खबरें, ओलंपिक में मिलने वाली विजय और कामयाबियां एक अलग प्रकार की भावना और एक अलग प्रकार का माहौल क्रिएट करती हैं जो कि एक अच्छी बात है। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये एक अच्छा बदलाव है इस कोरोना काल में, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखा जाए। और अब बारी है किसी श्रोता के विचार सुनने की, तो देखते हैं कि दीदी ने किसका चयन किया है।
जी, आज हम दिल्ली से धीरज प्रजापति के विचार सुनेंगे।
नमस्ते जी, धीरज प्रजापति, हमारी तरफ से आपके देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम को भी, रेडियो तेहरान के सभी लोगों के लिए। हम भारतवासी बोल रहे हैं दिल्ली से, अभी आप हमारा नाम तो जानते ही हैं और हमारे संदेश भी सुनते ही रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम भी चलाते हैं मगर अभी हम उस पर हटा दिए हैं। आपका कुछ प्रोग्राम डबल डबल सुनने को मिलते हैं, या तो हमको लगता है आपकी हफ्ते में शायद एक या दो दिन छुट्टी रहती है तो शायद हम आपके न्यूज़ को या आपके समाचार को सुन नहीं पाते हैं, तो हमको इसके वजह से एक दिन का हमारा गैपिंग हो जाता है। 13 तारीख का प्रोग्राम मैंने सुना आपका, रात में प्रसारित किया वही प्रोग्राम आया, उसके बाद 14 तारीख को भी रिपीट वही प्रोग्राम शो हो रहा है, कि जो केवल इसकी डेट चेंज हुई है कि हम 14 तारीख को मध्य रात्रि या रात्रिकालीन का प्रोग्राम है हिंदी में, और 15 तारीख को भी सुबह हम देख रहे हैं अपने यहाँ भारत के अनुसार 10 बजे के आसपास, तो वही प्रोग्राम 14 तारीख वाला भी 15 तारीख को भी शो कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर शायद अगर आपकी कोई सरकारी छुट्टी हो, कुछ भी हो तो कोई बात नहीं, मगर ऐसा हमको लगा इसलिए हम पूछ रहे थे आपको कि जो आप 1 घंटे का प्रोग्राम आप प्रोग्राम आप डेली प्रसारित करते हैं उसमें से एक हफ्ते में एक या दो दिन का प्रोग्राम, एक मतलब एक एक घंटे का प्रोग्राम दो दिन हो जाता है, वही रिपीट हो जाता है, ये मेरा कहने का मतलब था। और चेंजेस तो आते हैं प्रोग्रामों में आगे चल के, मगर जो रिपीट हो जाते हैं ना वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 14 तारीख को प्रोग्राम नहीं चेंज हुआ है आपका, और 15 तारीख को भी आ रहा है एक घंटे का प्रोग्राम, वही यही है आपसे गुजारिश। बस मैं आपसे, मेरा एक अपील है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ से, वहाँ के लोग हमारे और दोस्त लोग हैं वो बोल रहे थे कि उनको बोलिएगा वॉइस संदेश भेजें अपनी आवाज़ में कुछ उधर से, क्योंकि हमारे और मुस्लिम भाई लोग रहते हैं और बहन लोग, तो सुनना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं।
तो श्रोताओ, हमारे श्रोता धीरज प्रजापति के विचार आपने सुने। यहीं पर कार्यक्रम पत्र संसार समाप्त होता है, और चूंकि समय अब बिल्कुल नहीं बचा इसलिए हम श्रोताओं से भी अनुमति लेना चाहेंगे। तो श्रोताओ, इसी के साथ अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। तो दोस्तों, कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज। Thank you.